आज हमारा बड़ा सौभाग्य है कि हमारे सामने दीपा दीदी हैं। दीपा दीदी ने 31 वर्ष अपने 31 वर्ष जीवन के इसी संस्था को दिए हैं। आप कोई भी हम इतना लंबा चौड़ा विवरण नहीं दे सकते हैं, मुझे कागज में लिख करके दिया गया है, क्योंकि इसको देने में फिर सारा समय चला जाएगा। आप किसी भी चीज के लिए सोच लीजिए, चाहे वो हॉस्पिटल हो, चाहे वो एयरपोर्ट हो, चाहे वो कोई रोटरी क्लब हो, लायंस क्लब हो, इनर व्हील क्लब हो, किसी का नाम ले लीजिए। आप जहां भी सोचेंगे, आप जितने भी INS आपके हैं नेवी में, चाहे वलसूर हो, कोई हो, किसी का भी नाम ले लीजिए, आप फौज में जो मिलिट्री सर्विसेज हैं वहां पर, सेंट्रल सर्विसेज हैं वहां पर, कोई ऐसी जगह नहीं है जहां आपके लेक्चर नहीं होते रहते हैं। ये नहीं कि एक बार दे दिया छुट्टी हो गई, ऐसा कुछ नहीं, रेगुलर। आप जो है विले पार्ले में, वहां MG हॉस्पिटल है, रेगुलर फैकल्टी है वहां पे, वहां के डॉक्टर्स, वहां के जितने भी लोग हैं, आप ही से जो है वो ज्ञान प्राप्त करते हैं और वहां पे आना जाना है। और जो सबसे बड़ी चीज है कि अभी आप देखेंगे कि हमारे यहाँ ये कहा भी जाता है कि आप जो है जिससे बात करें तो अच्छा बोलें, आप मीठा बोलें और मधुर बोलें। लोग कहते हैं कि जब कोई बोलता है तो ऐसा लगता है कि फूल झड़ रहे हैं, तो वही आपको यहाँ पर महसूस होगा जब दीपा दीदी अपनी बातों को आपके सामने रखेंगी, तो आपको ये लगेगा कि वाकई फूल झड़ रहे हैं। और यही इनकी सबसे बड़ी बात है कि मधुर वाणी भी है और जो ज्ञान है उससे परिपूर्ण है। कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो आपके मन में अगर कोई ऐसी बात आती है तो आप प्रश्न भी पूछ सकते हैं अगर समय रहेगा उसके अनुसार, वरना जो आज का टॉपिक है वो आपके सामने है। और हारमोनी क्या है, रिलेशनशिप, इस पर उनकी चर्चा होगी। और रिलेशनशिप तभी मधुर संबंध बनते हैं जब हम किसी के नजदीक होते हैं। तो मैं ये चाहूंगा कि जो लोग पीछे बैठे हैं इस टॉपिक को देखते हुए वो थोड़ा सा नजदीक आ जाएं, तो आगे आएंगे तो सीट भी भरी भरी लगेगी और बड़ा अच्छा लगेगा। और मतलब ऐसा कोई इरादा तो किसी का है नहीं कि यहाँ से पीछे से भाग जाएंगे, तो ऐसा तो होता नहीं, तो ये वो वाला क्लास भी नहीं है, तो इसलिए आप लोग आगे आ जाए, बहुत अच्छा लग रहा है। और आगे भी ये आपके सोफा भी खाली है, तो सोफे पे आ जाइए आप लोग, जो लोग आ सकते हैं यहाँ पर। हमारी बहनें जो हैं वो आगे आ जाएं, सोफे बैठ जाएं। तो जैसा मैं आपसे बता रहा था कि आप जो हैं वहां बॉम्बे से आपने मुंबई जिसको कहते हैं, वहां यूनिवर्सिटी से आपने कॉमर्स में आप ग्रेजुएट हैं वहां पर, और वहीं पर जो सेंटर है उसी बॉम्बे में जो सेंटर है उसी सेंटर से आप जुड़ी हुई हैं। ब्रह्मा कुमारी का विले पार्ले में जो सेंटर है आप वहीं से हैं, और जो लोग वहां पे हैं बॉम्बे में यानी मुंबई में, वो लोग अगर चाहते हैं तो वहां का लाभ पूरा ले सकते हैं। और फिर जीवन में आप देखेंगे कि नित्य आपने या फिर 2-3 दिन में देखा है कि हमने कुछ परिवर्तन हमारे अंदर हुए हैं। अब संबंधों से हम कैसे अपने संबंध जो हैं उनको कैसे मधुर बनाएंगे, तो आज जो यहां पर जो मधुरता बिखेरने के लिए दीदी आई हैं उनका स्वागत करते हुए अनुरोध है कि वो अपनी बात कहें, आप उनको समझें। एक बार स्वागत जरूर कर लीजिए सर्कल धन से, बहुत बहुत धन्यवाद।
ओम शांति। दो दिनों से हम बहुत अच्छी बातें ज्ञान की सुन रहे हैं, वैसे तो नियरली 2.5 दिन हो गए, आप सभी फ्राइडे को पहुंचे हैं, आज संडे है, तो ये सब बातें आप सुन रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है? आपको लगता है ये सब बातें हम प्रैक्टिकल अपने लाइफ में उतार सकेंगे, प्रयोग कर सकेंगे? अंतर से आपको महसूस होता है कि करना जरूरी है, महसूस होता है? तो ये जो आपके शुद्ध संकल्प है अपने प्रति, इन संकल्पों को और दृढ़ता धारण करने के लिए, उसमें शक्ति भरने के लिए आप जरूर यहाँ जो समय आपको मिला है उसमें परमात्मा से भी थोड़े समय के लिए टाइम निकालकर, हमारे जो भी मेडिटेशन के कमरे हैं एक तो बड़ा कमरा यहाँ नजदीक है, एक पीछे से डोम में भी है, और एक जो भोजन का है उसके बाजू में रिसेप्शन के पीछे ऊपर में भी है। तो कोई भी एक स्थान पर आराम से बैठकर परमात्मा को अपना ये शुद्ध संकल्प, दृढ़ संकल्प जरूर लिख कर भी दे सकते हैं, दिल से तो आप सुनाएंगे ही। तो परमात्मा उस शुद्ध संकल्प को, दृढ़ संकल्प को अपनी दुआओं से बल भर देगा, स्टैंप लग जाएगा। स्टैंप लग जाएगा तो ऑफिशियल हो जाता है ना, आपका कोई भी डॉक्यूमेंट आपका स्टैंप होता है तभी ऑफिशियल हो जाता है। तो परमात्मा के भी स्टैंप लग जाए, परमात्मा की दुआएं हमें उसके लिए मिल जाए, इसके लिए यहाँ ही जाने के पहले ये कार्य जरूर करना। क्योंकि यहाँ इस वायुमंडल में हम जो कुछ बातें समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, इसको हमें परमात्मा की दुआओं से, शक्ति से अपने जीवन में धारण करना है। तो हम व्यक्तिगत रूप में जरूर अंदर से उमंग उत्साह रखते हैं, लेकिन शक्ति चाहिए, और उसके लिए परमात्मा बहुत प्यार से हमें ये राजयोग के द्वारा अपने आप के साथ संबंध जुड़ा रहा है, जिस शक्ति से ये हर संकल्प को आप अपने जीवन में प्रैक्टिकल में ला सकेंगे। और जो अभी हमने पैनल डिस्कशन में सुना, इतने सुंदर अनुभव थे, अच्छा लगा। तो आपका भी ऐसा अनुभव होना है ना, आपको भी ऐसे अनुभव औरों के साथ शेयर करना है, शेयर करेंगे ना? तो पहले इसको अनुभव खुद करना होगा, और इसको अनुभव करने के लिए हमारा अपने आप के साथ संबंध और ईश्वर के साथ संबंध बहुत मजबूत चाहिए। सभी अपना अनुभव शेयर कर रहे थे, तो अपने अनुभव में कह रहे थे कि कैसे उन्होंने ईश्वर से उस सहयोग अनुभव किया, इस ज्ञान को अपने जीवन में प्रयोग किया। तो यहाँ पहला लेसन ही हमने स्वयं के बारे में समझा, पहले दिन सुना ना स्वयं की पहचान। तो पहला संबंध हमने ठीक करना है किसके साथ, अपने आप के साथ। क्योंकि आज तक हमने जो मिरर में देखा उसी को अपना अस्तित्व माना, और उसको ही सशक्त रखने के लिए, उसको ही सुंदर बनाने के लिए कहीं ना कहीं प्रयास रखे। लेकिन अब हमने समझा कि वो तो सिर्फ एक आधार है, साधन है शरीर, लेकिन वास्तव में मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ? बहुत सुंदर दिव्य शक्ति आत्मा हूँ। और कैसी आत्मा हूँ, कौन सी विशेषताएं हैं हमारे अंदर? मैं शांत स्वरूप हूँ, प्रेम स्वरूप हूँ, पवित्र स्वरूप हूँ, ज्ञान स्वरूप हूँ, सुख स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप हूँ और आनंद स्वरूप हूँ। आत्मा सतो प्रधान है, तो ये सातों गुण हमारा स्वभाव है, हमारी विशेषताएं हैं। जैसे आप में से किसी को भी अगर अपना परिचय देना हो तो आप डिटेल्स देंगे ना, प्रोफाइल बताएंगे ना, जैसे अभी भाई ने हमारा परिचय दिया, ऐसे आप भी देंगे कि ये नाम है, यहाँ मैं रहता हूँ, ये पोस्टिंग में हूँ, मैं यहाँ इस फोर्स को बिलोंग करता हूँ, इतने वर्षों का मेरा अभ्यास है, यहाँ यहाँ मैंने ये कार्य किया है, इतने डिफिकल्ट मेरी पोस्टिंग में मैंने ये अचीव किया है, उपलब्धियाँ। तो ये सब चीजें आपको याद रहती है, याद रहती है। सुबह उठकर ही क्या होता है, ये सब आपका अपना व्यक्तित्व सामने स्मृति में रहता है ना, कि रोज कहीं नोटबुक में लिखकर पढ़ते हैं आप ये सब कुछ? नहीं ना, नेचुरल याद रहता है। ये हमारा मूल व्यक्तित्व है, आत्मा का मूल स्वभाव है ये सातों गुण। तो ये भी हमें क्या करना है, पक्का कर लेना है, ताकि ये नेचुरल सारा दिन हमारी स्मृति में रहे। और फिर हमारा अपने आप के साथ संबंध कैसे होगा, शक्तिशाली हो जाएगा, क्योंकि हम अपने आंतरिक स्व के साथ सदा जुड़े हुए रहेंगे और उस आंतरिक गुण और शक्तियों को महसूस करेंगे। तो आज तक हमने ये गुणों को अपने जीवन में लाने का प्रयास तो किया, शांत रहने का प्रयास किया, बार बार अपने आप को कहा कि क्रोध नहीं करना है मुझे, कहा ना, पहले भी हमने ये संकल्प तो लिया है कि मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए, मुझे क्रोध नहीं करना चाहिए, मुझे शांत रहना चाहिए। ऐसा पहले भी सोचते थे? हाँ, सोचते तो जरूर थे, लेकिन फिर प्रैक्टिकल में हम देखते थे जब परिस्थिति आती थी तो डिफिकल्ट था। तो ये जब बार बार हम कहते थे ना कि मुझे क्रोध नहीं करना चाहिए, मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए, मुझे ऐसे शब्द नहीं बोलने चाहिए, चाहे परिवार में चाहे अपने सहयोगियों के साथ। तो ये जब हम कहते हैं तो शायद हमारा मन इसको इतना स्वीकार नहीं कर पाता है क्योंकि शक्ति नहीं है। लेकिन परमात्मा हमारा अपने साथ संबंध बहुत शक्तिशाली बनाता है, और यहाँ परमात्मा हमें राजयोग के द्वारा स्मृति दिलाता है कि मैं हूँ ही शांत स्वरूप आत्मा। जब आप अपने आप को ये संकल्प देते हैं कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, तो हमें कैसा लगता है? अपने आप को कहते थे मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए, मुझे ऐसे अपशब्द नहीं बोलने चाहिए, मुझे शांत रहना चाहिए, और अब परमात्मा ने हमें स्मृति दिलाई कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, तो कौन सा अच्छा लगता है? कौन सा अच्छा लगता है? मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। क्योंकि जैसे हम ये सोचते हैं तो हमारे अपने प्रति भावनाएं क्या होती है? बहुत शक्तिशाली, शुद्ध, सकारात्मक, कि मैं हूँ ही शांत स्वरूप आत्मा। तो हमारा अपने प्रति भावनाएं ऊंची हो जाती है, स्वमान ऊंचा हो जाता है। तो सबसे मुख्य पहला किसके साथ संबंध अच्छा बनाना है? अपने साथ। तो हम ऐसे समझते हैं, लेकिन वास्तव में हमारे सभी के साथ संबंधों का आधार अपने साथ संबंध। और ये संबंध, क्योंकि कारोबार है तो संबंध तो जरूरी है, इससे हम दूर नहीं रह सकते। भले हम भी यहाँ समर्पित जीवन है ईश्वरीय सेवाओं में, लेकिन यहाँ भी संबंध है। आप सोचते होंगे कि ये बहने या भाई जो भी है, उन्होंने तो जीवन अपना छोड़कर यहाँ त्याग किया है, लेकिन ये भी परिवार ही है, आपके जैसा ही बड़ा परिवार है। तो यहाँ संबंध कौन से होंगे? और भी ज्यादा शक्तिशाली। इतना बड़ा संगठन, उसमें प्यार से चलना, समरसता से चलना। तो इसलिए हम देखते हैं संगठन हर जगह है, और इसलिए संबंधों में हमें हर जगह आना आवश्यक है, इससे हम दूर नहीं हो सकते। नाराज हो सकते हैं, दूर नहीं हो सकते कारोबार में, परिवार में, लेकिन ये सभी संबंधों में समरसता कैसे रहे, मधुरता कैसे रहे, एक साथ ताल में ताल मिलाकर हम कैसे चल सके, हरेक के प्रति हमारी शुभकामनाएं और हरेक के प्रति सम्मान की भावनाएं कैसे रहे, हरेक से जब हम मिलें तो उनकी विशेषताओं को हम देख सकें, महसूस कर सकें, उनकी अंतर की जो शुद्धता श्रेष्ठता है उसको हम देख सकें, उसको पहचान कर महसूस करके उसके आधार से उनके साथ लेन देन करें। तो वो जो समरसता है, एक पॉइंट ऑफ हार्मनी है हर संबंध में, वो बहुत आवश्यक है। मुझे हमेशा याद आता है जब भी ये टॉपिक हम आपस में लेन देन करते हैं, तो मुझे हमारी प्रकाशमणि दादी जी बहुत प्यार से याद आती हैं। हमने कल ही मम्मा का दिवस, स्मृति दिवस आपने साथ में हमने सेलिब्रेट किया, और आपने सुना भी उनका परिचय कि वो हमारी फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव हेड थी। तो ब्रह्मा बाबा के अव्यक्त होने के बाद फिर हमारी प्रकाशमणि दादी जी एडमिनिस्ट्रेटिव हेड रही। तो दादी जी हर साल हमारा यहाँ माउंट आबू में बहुत सुंदर कॉन्फ्रेंसेस, जैसे अभी आप देख रहे हैं सेमिनार्स तो होते ही हैं हर एक प्रभाग के, लेकिन एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हर साल होती है। तो उसका हर बार थीम होता है, और इस बार उस कॉन्फ्रेंस का काफी वर्ष पहले की बात है, उस थीम का ही थीम में ही था कि कैसे विश्व में हार्मनी हो, कैसे विश्व एक हो। तो उस थीम से हर एक व्यक्ति बहुत सुंदर अपना वक्तव्य प्रदान कर रहे थे, और दादी जी का जब बोलना हुआ, दादी ने एक बहुत छोटी सी बात कही। दादी ने कहा, मैंने हार मानी, आप जीते, यह है हार्मनी। है ना अच्छी बात? कि हमने हार मान लिया और आप जीत गए, ये हार्मनी है ना, हार्मनी। लेकिन कौन हारता है? हारना अच्छा नहीं लगता है ना, क्योंकि वैसे भी आर्म फोर्सेस में जीत के लिए ही हम हर चीज आगे बढ़ते हैं, अपने आप को पक्का कराते हैं कि हम विजयी हैं। यहाँ भी परमात्मा हमें वरदान देते हैं कि आप विजयी हैं। तो यहाँ हारता कौन है? अगर आपने हार्मनी की, आपने सहयोग दिया, आपने सामने से सामने वाले व्यक्ति से बातचीत की, उसको क्षमा किया, तो कौन हार रहा है? हमारा अहम हारता है, ईगो हारता है। न आप हारते हैं, न वो व्यक्ति हारता है। हारता कौन है? ईगो। अहम जो भाव है उसको आप हराते हैं। और जीतता कौन है? जीतता कौन है? संबंध जीतता है। हमारा आपस का जो संबंध है, सहयोगी है, परिवार में जीवन साथी है, बच्चा है, कार्य क्षेत्र में जो भी संबंध है, वो संबंध जीतता है। जरूरी है संबंधों को जीतना? जरूरी है, जीतना जरूरी है। आप कोई भी कार्य कर रहे हैं, किसी भी पद पर हैं फोर्सेस में, लेकिन संगठन के बिना कार्य कर सकते हैं? टीम वर्क के बिना कर सकते हैं? नहीं। संगठन की शक्ति तो आवश्यक है, तो उसमें सहयोग से चलना अर्थात उस संबंध को जीतना आवश्यक है। तो ये शक्ति यहाँ हम राजयोग से अपने अंदर भरते हैं। कैसे? हम अपने उस अहम को हराकर हम एक दूसरे के प्रति सदा ही शुभ भावनाएं रखें। तो ये वास्तव में हमारे संबंध इसमें पहले किसके साथ अच्छे चाहिए? अपने साथ। जहां हम अपने गुण और शक्तियों को अपने अंदर मजबूत बनाते जाएं, ताकि फिर हमारी कमजोरियां क्या होगी? थोड़ा थोड़ा अहम है, थोड़ा थोड़ा गुस्सा है, थोड़ा क्रोध आ जाता है, कभी कभी आ जाता है, आता है, क्या कहेंगे, आता है, नहीं आता है, आता है, अच्छा। और घर में आता है, कारोबार में आता है, ज्यादा कहाँ आता है? दोनों जगह आता है। अच्छा, तो हम देखते हैं कि ये जब भी आता है ये क्रोध, ये हमें बहुत तकलीफ देता है, हमारी शारीरिक स्वस्थता जो है उसको भी प्रभावित करता है, संबंधों को भी बहुत प्रभावित करता है। किसी ने बहुत अच्छी बात कही कि द रिजल्ट्स ऑफ एंगर आर मोर पेनफुल देन द रीजंस। जो उसका परिणाम होता है क्रोध का, वो उसकी जो कारण है, जिस कारण से हमको लगता है हमें क्रोध करना आवश्यक है, उससे ज्यादा भयानक होते हैं, उससे ज्यादा दर्द वाले होते हैं। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हम इन छोटे छोटे जो हमारे दुश्मन है ना, दुश्मन क्योंकि न चाहते भी आ जाते हैं, नहीं हमें प्रभावित करते हैं। हम चाहते हैं कि हम शांत रहे, हम स्नेह से सहयोग से काम करें, और ये क्रोध क्या कर लेता है, क्या करता है? जब हमारी बुद्धि उसके वश हो जाती है तो क्या होता है? फिर ऐसा गलत निर्णय हम ले लेते हैं, बोल और कर्म में वो क्रोध व्यक्त हो जाता है। तो इस जो हमें परवश कर लेता है ये दुश्मन, इस पर हमें विजय प्राप्त करनी है। तो इसलिए अपने आप के साथ संबंध, अपने उस आंतरिक स्व के साथ हमारा बहुत शक्तिशाली संबंध, जो हमेशा हम उस आंतरिक स्व को अनुभव कर सके, अपने उन गुण और शक्तियों को अपने अंदर अनुभव कर सके और उनको भर सके, शक्तिशाली बनाते जा सके, तो ये पहला संबंध बहुत आवश्यक है। दूसरा संबंध, जब अपने साथ संबंध अच्छे हो गए, अपने मित्र बना दिया अपने आप को, अपना मन हमारा मित्र हो गया, तो हरेक के साथ हमारे संबंध कैसे होंगे? हम खुश हैं, हम अपने आप से खुश हैं। आई एम हैप्पी बीइंग माई सेल्फ। मैं जैसा हूं, जो रोल प्ले कर रहा हूं, जिस जिम्मेवारी में हूं, जिस क्षेत्र में हूं, जिस स्थान पर हूं, जो मेरा परिवार है, मेरा स्वास्थ्य है, इन सब से मैं बहुत खुश हूं। ये अनुभूति, ये है अपने आप के साथ अच्छा संबंध जोड़ना, अपने आप के मित्र बनना। ये बहुत जरूरी है प्रश्न अपने आप से पूछना, हम अपने आप से खुश हैं? मैं अपने आप से खुश हूं? एक मिनट के लिए प्रश्न पूछिए, आंखें बंद कर लीजिए, मैं अपने आप से खुश हूं, संतुष्ट हूं, अपने जीवन से, अपने स्वास्थ्य से, अपने कारोबार से, अपने कार्य क्षेत्र में, अपने सीनियर से, सहयोगियों से, परिवार में, अपने जीवन साथी, बच्चों से और संबंधों से, मैं खुश हूं। अब आंखें खोल दीजिए। अब दूसरा प्रश्न परमात्मा हमसे पूछते हैं, हमारी भी जब रोज की क्लास होती है, हम सब स्टूडेंट्स हैं। यहाँ ब्रह्म कुमारी की एक विशेषता है कि हम सब स्टूडेंट्स हैं, और यहाँ टीचर कौन है? एक परमात्मा पिता है। आप स्टूडेंट पीछे आए हैं इसलिए हम कुछ बहनें आपके साथ ये बातें शेयर कर रही, लेकिन फिर भी आप हमारे साथ ही बन जाएंगे और कुछ समय के बाद आप अपने अनुभवों से औरों के साथ भी ये ज्ञान को शेयर करेंगे। तो इसलिए हम देखते हैं कि परमात्मा फिर हमें प्रश्न पूछता है कि आप सदा खुश हैं। अब अपने आप से पूछिए कि हम सदा खुश हैं, तो क्या जवाब आता है? अपने जीवन से अपने आप से सदा खुश हैं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर हम अपने आप से खुश नहीं है, अपने साथ ही हमारा संबंध अच्छा नहीं है, तो फिर ये तो सबसे बड़ा नुकसान है। दूसरों के साथ संबंध में अगर थोड़ी खिटपिट है तो फिर भी चल जाएगा। ईश्वर के साथ तो संबंध, वो तो हमेशा करुणा का सागर है, तो वो तो हमेशा हमें प्यार करता है। दूसरों के साथ संबंध अगर थोड़ी खिटपिट है, वो हमारे बारे में अगर ठीक नहीं भी सोचते हैं, तो थोड़ा फिर भी चल जाएगा। लेकिन हम अपने बारे में अगर अच्छा नहीं सोचते हैं, हम अपने आप से ही खुश नहीं हैं, तो ये तो बहुत नुकसान है। क्यों? क्योंकि 24 घंटा हम किसके साथ हैं? किसके साथ हैं? अपने साथ। तो हम जो अपने बारे में सोच रहे हैं 24 घंटे, वो ऊर्जा किसके पास आ रही है? किसके पास आ रही है? किसके पास आ रही है? हमारे पास। तो अगर हम अपने आप से खुश नहीं हैं, अपने स्वास्थ्य से, अपने कार्य से, अपने कार्य क्षेत्र से, अपने परिवार से, अपने जीवन से, तो बार बार हमारे पास कौन सी ऊर्जा आ रही है? दुख की, स्ट्रेस की, कहीं ना कहीं निराशा की, फ्रस्ट्रेशन की। तो वो ऊर्जा हमारी शक्ति को क्या कर रही है? तो हमारा अपने आप के साथ संबंध अच्छा होना बहुत जरूरी है, सबसे महत्वपूर्ण है। और फिर हम देखते हैं औरों के साथ हमारे संबंध, और इन दोनों का आधार फिर है संबंध हमारा ईश्वर के साथ, जिसके बारे में भी हम यहाँ देख रहे हैं। तो हम देखते हैं कि हमारे संबंधों में हमारे एक दूसरे के प्रति हमारी भावनाएं जो है वो बहुत शुद्ध होनी चाहिए। तो उसके लिए हमें कुछ परमात्मा यहाँ राज्यों के अभ्यास से हमारे अंदर कुछ शक्तियों को भरता है, जो शायद हमने सुना भी है। हमारा लेसन अभी राज्यों की विधि हुई, आपकी लेसन अब होगी, होगा आपका, तो उसमें आप ये सुनेंगे भी। और फिर इसको रेगुलर अभ्यास जो मेडिटेशन का है, उससे ये शक्तियां जो है, जिससे हमारा अपने आप के साथ संबंध और औरों के साथ संबंध और ईश्वर के साथ संबंध, ये सहज होता जाएगा। उसमें पहली मनोवृत्ति कहो या शक्ति कहो, वो सुनना है। सुनना जरूरी है? सुनना सहज है? सुनना सहज है? सुनना सहज है? क्योंकि जितना हम सुनते हैं उतना हम सीखते हैं और हमारा विकास होता है। लेकिन आज हम देखते हैं हम वही सुनते हैं जो हम सुनना चाहते हैं, ऐसा है ना? तो जो रियलिटी है उसको हम नहीं सुनते हैं, नहीं समझते हैं, नहीं स्वीकार करते हैं, नहीं बुद्धि में रखते हैं, तो क्या होगा? उससे हमारे कारोबार पर असर होता है। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हम हर बार हर व्यक्ति से संबंध में आए तो हम सुन सकें। सुनना माना स्वीकार करना। तो हम देखते हैं कि जैसे कोई व्यक्ति कोई बात बोल रहा है जो हमें ठीक नहीं लगती है, तो हम क्या करते हैं? यहां से सुनना बंद कर देते हैं और हम सोच रहे हैं ये अपनी बात पूरी करे तो मैं अपनी बात बोलूं। नहीं, ये ठीक नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, ऐसा है ना? ऐसा होता है ना? होता है ऐसा? जब भी कोई कुछ कहता है जो हमें स्वीकार नहीं है, हम तुरंत या तो बीच में बोलना शुरू करते हैं, अब कोई बड़े हैं या कोई ऐसा व्यक्ति है नहीं बोल सकते हैं, तो हम यही सोच रहे हैं कि ये पूरा करे फिर मैं इसको समझाऊंगा, ऐसा होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये है नहीं, तो हम उनकी बात सुनते नहीं हैं। तो क्या होता है जब संगठन होता है, आपस में विचार विमर्श करना पड़ता है, नहीं? कहां आपको कोई इवेंट के लिए बुलाया जाता है, जहां कोई हादसा हुआ है, जहां कोई प्राकृतिक आपदा हुई है, आप संगठन रूप में जाकर वहां मदद करते हैं, होता है ना? क्राइसिस सिचुएशंस में आप जाते हैं, तो वहां संगठन में आपस में बातचीत करनी होती, सहयोग से ही करेंगे ना? तो क्या होता है, आपस में एक साथ मिलकर वो कार्य करना होता है। तो अगर जब हम आपस में मिलते हैं और बातचीत कर रहे हैं, अगर हम एक दूसरे की बात सुनते नहीं हैं, तो क्या होता है? हम हमारे मन में अपने ही विचार रहते हैं, तो हम कोई भी नई बात को भी सीख नहीं पाते नहीं? तो न सुनना माना वो ब्रिज ऑफ कम्युनिकेशन को हम तोड़ देते हैं। परमात्मा हमें प्यार से सिखाता है कि कैसे हमें हरेक के विचारों को सम्मान देना है। हम शायद कुछ और कर रहे हैं, हमें कोई और बात सही लगती है, लेकिन ये भी एक और तरीका है जो हम कर सकते हैं, ठीक है? जब हम किसी की बात सुनते हैं जो बात हमारे तरीके से, हमारी समझ से भिन्न है, तो हम क्या समझते हैं? ये बात जो है एक नया तरीका है, एक अपना उनका विचार है, उनका कार्य करने का ये तरीका है। अब जैसे आपने किसी की बात सुनी और आप फिर बोलना शुरू करेंगे, तो क्या होगा? वो व्यक्ति क्या करेगा? आपकी बात सुनेगा, क्योंकि जब हम सुनते हैं, सुनना माना सम्मान देना, सम्मान देना। तो क्या होता है, जब भिन्नता भल होती है विचारों में, लेकिन हम एक दूसरे की बात सुनते हैं, समझने का प्रयास करते हैं, आपस में वार्तालाप करते हैं, तो क्या होता है, एक दूसरे के प्रति हमारी जो शुभ भावनाएं हैं, उसके वजह से संगठन मजबूत होता है, समाधान पर आता है। मत भेद होते हैं, मन भेद नहीं। जरूरी है कार्य क्षेत्र पर? जरूरी है? क्या समझते, जरूरी है? जब मन भेद हो जाते हैं तो संगठन में कार्य कर सकते? डिफिकल्ट लगता है, बहुत स्ट्रेस हो जाता है, आपस में जो नेगेटिव भावनाएं हैं वो स्ट्रेस हो जाती है। परिवार में भी जरूरी है मत भेद हो, मन भेद नहीं? जरूरी है? विचारों में तो अंतर जीवन साथी के साथ होगा ही, होगा ना? माता पिता और बच्चों के बीच में होगा अंतर? होगा? होगा? नहीं होगा? होगा। हाँ, आज तो बच्चे बहुत होशियार हैं, तो जरूर उनकी भी अपनी समझ है, तो हमें भी उनकी बात को क्या करना है? सुनना है। जब हम उनकी बात को सुनते हैं और उनको प्यार से सम्मान देते हैं, तो वो भी हमारी बात सुनते हैं। नहीं तो हमें क्या कंप्लेन होती है, हमारे पास चिल्ड्रन कैंप होता है, अभी भी बच्चे आए हुए हैं, नीचे हमारा प्रोग्राम चल रहा है, तो बच्चे जो है सेंटर्स पर भी, हमारे हर स्थान पर बच्चों का कैंप हम मई जून में जैसे छुट्टियां होती है हम करते हैं। उनकी पहली कंप्लेन होती है, मम्मी डैडी हमारी बात नहीं सुनते। मम्मी डैडी की कंप्लेन क्या है? लेकिन हम देखते हैं कि जब भी बच्चा अपनी कोई बात शेयर करना चाहता है नहीं, तो क्या होता है, मम्मी डैडी क्या होते हैं, किस रोल में होते हैं? माता पिता, पेरेंट। ये हम सब जानते हैं, ये कुछ नहीं जानता है। यहां हम सीखते हैं कि हर एक कौन है? आत्मा है। शरीर छोटा है लेकिन है कौन? आत्मा। तो किसका बच्चा है? परमात्मा का बच्चा है। तो हम उनकी बात प्यार से सुनते हैं, फिर उसको प्यार से समझाते हैं। तो हम देखते हैं कि सुनना तब सहज होता है जब हम उपस्थिति होती है। अब जैसे यहाँ आप उपस्थित हैं, दिखाई दे रहे हैं आप सब, तो 100% उपस्थित हैं, फिजिकली आप यहाँ ही बैठे नहीं, लेकिन मन से यहाँ है। मन से तो आप कहाँ भी हो सकते हैं नहीं, पोस्टिंग में भी जा सकते हैं, घर जा सकते हैं, माउंट आबू का अवलोकन कर सकते हैं, कल आपकी वैसे साइट सीइंग है लेकिन अभी से ही कर सकते हैं नहीं, जा सकते हैं ना मन से। तो हम देखते हैं हमेशा संबंधों को ठीक रखने के लिए, परिस्थितियों को भी सामना करने के लिए वर्तमान में रहना बहुत आवश्यक है। नाउ, हर एक के वर्तमान में, अर्थात उनके भी पास्ट की बातों को भूलना। बहुत सुंदर किसी ने कहा कि सबसे जो हम देखते हैं अनुभवी या सबसे बुद्धिमान मेरे जीवन में व्यक्ति मैंने देखा, मेरा दर्जी है। सबको प्रश्न आया कि दर्जी क्यों, मैं इस कहता है कि सबसे अनुभवी या सबसे बुद्धिमान है, तो कहा मेरा दर्जी जब भी आता है तो मेरी नई माप लेता है, क्योंकि वो समझता है कि कहां ना कहां परिवर्तन तो हुआ होगा, तो माप बार फिर से ले लेता है। बाकी लोग जब हम से मिलते हैं तो उनके पास हमारी माप पहले से है और उसी माप से वो हमारे साथ लेन देन करते हैं, ऐसा है ना? पास्ट का, कहाँ पोस्टिंग नहीं हम पहुंचे, हम पहले से हमारे कोई वहां सहयोगी उनसे बात कर लेते हैं, यहाँ का सीनियर कैसा है, यहाँ का कमांडेंट कैसा है ना, और वो कहेगा कि यहाँ थोड़ा स्ट्रिक्ट है, थोड़ा ये है, तो उसको उसी माप से हम हर बार उनके साथ आपस में मिलते हैं, उसी दृष्टिकोण से उसको देखते हैं, उसी दृष्टिकोण से उसके साथ लेन देन करते हैं। तो हरेक के वर्तमान में रहना, हरेक के लिए शुभ भावना रखकर क्षमा भावना रखना जरूरी है, जरूरी है। हम बदलना चाहते हैं तो हमें अपने विचारों को भी औरों के लिए शुभ भावना रखनी है, क्षमा भावना रखनी है, वर्तमान में रहना बहुत जरूरी है। फिर हम देखते हैं कि फिर उससे हम एक दूसरे के साथ समझ सकते हैं। हम संबंधों में देखते हैं तो सहन करना, आपस में एक दूसरे के साथ एडजस्ट करके चलना। हम देखते हैं कि गुजरात में ये बहुत सुंदर एक फेस्टिवल है नवरात्रि, लेकिन अभी तो हम सब जगह मनाते हैं ना, सब जगह। नवरात्रि में सबसे अच्छी चीज कौन सी होती है जिसमें हमें उमंग उत्साह होता है मनाने में? गरबा रास, नहीं मनाते हैं ना, गरबा रास खेलते हैं ना, भले आए ना आए लेकिन हम सब खेलते हैं ना, इंजॉय करते हैं। गरबा रास की विशेषता क्या है? नहीं खेलते ना वो लकड़ियों से, तो जब रास खेला जाता है तो सामने वाला व्यक्ति जैसे खेल रहा है तो उसके साथी को क्या करना पड़ेगा? उसके अनुसार खेलना पड़ेगा। वो अपने विधि से खेले, ये अपने विधि से खेले, तो क्या होगा? कहीं ना कहीं एक दूसरे को लग जाएगा, क्योंकि ये स्टाइल अलग तो उनकी स्टाइल अलग तो लग जाएगा। तो उस रास की विशेषता है कि एक दूसरे के साथ एडजस्ट होकर चलना, ताल में ताल मिलाना। तो परमात्मा हमें यहाँ बहुत सुंदर रोज आध्यात्मिक ज्ञान की शिक्षा देते हैं। रोज परमात्मा हमें एक स्पिरिचुअल स्टडी, जिसको हम आध्यात्मिक भाषा में कहते हैं ज्ञान की मुरली, उसमें हमें सिखाते हैं कि कैसे संस्कारों की रास खेलनी, हरेक के प्रति हमारी शुभ भावना रखनी है, संस्कारों की रास खेलनी, सहन करना है, रिएक्ट न करके रिस्पॉन्ड करना है। तो रिस्पॉन्ड करना सहज, रिएक्ट करना सहज। सहज क्या है? रिएक्ट करना सहज है ना, नहीं? उसने ठीक नहीं किया तो हमें तो गुस्सा आ ही जाएगा ना, उसने हमारी कंप्लेन हमारे सीईओ को कर दी कि इन्होंने सहयोग नहीं दिया, ये टाइम पर नहीं आए इसलिए ऐसा नहीं हुआ, तो गुस्सा तो आएगा ना, आएगा ना, आएगा कि नहीं आएगा? हाँ, तो फिर रिएक्ट करना सहज हो जाता है ना, रिएक्ट जल्दी हम कर लेते हैं। बच्चा भी हमारी बात नहीं मानता है, अभी हम बहुत समय के बाद घर आए हैं और हम देखते हैं बच्चे की रिजल्ट अच्छी नहीं है, गुस्सा आता है ना कि हम इतनी मेहनत कर रहे हैं उसकी पढ़ाई के लिए, उसको अच्छा क्लास दिया है, ट्यूशन कराया और क्या रिजल्ट लाया है, गुस्सा आता है, डांटते हैं, हाथ भी कई बार उठाते हैं। तो हम देखते हैं कि रिएक्ट करना सहज हो जाता है, रिस्पॉन्ड करना मुश्किल रखता है, लेकिन रिएक्ट करने में क्या हो जाता है? संबंध दूरी हो जाती है। दूसरा, कितना भी समय आप रिएक्ट करें, गुस्सा करें, एक दूसरे के साथ मतभेद में रहें, बात नहीं करें, परिवार में हो, कार्य क्षेत्र पर हो, लेकिन बाद में क्या करना पड़ेगा? एक दिन, दो दिन, जितने भी दिन आप लगाना चाहो, आपकी चॉइस, लेकिन बाद में रिएक्शन मोड से क्या करना पड़ेगा? रिस्पॉन्स मोड में आना पड़ेगा, क्योंकि कार्य तो उनके साथ ही करना है ना, दूसरे पोस्टिंग में तो हम तुरंत तो नहीं जाएंगे ना, ट्रांसफर तुरंत तो मिलना नहीं है ना, वहीं पे कार्य करना है, परिवार भी वहीं है तो ट्रांसफर भी नहीं ले सकते, उसी संगठन में कार्य करना है, तो फिर क्या करना होगा? धीरे धीरे अपने संबंध को ठीक करके वापस साथ में काम करना होगा। लेकिन जितना समय हम रिएक्शन मोड में रहेंगे तो क्या होगा? अंदर में गुस्सा, एक दूसरे के लिए चिड़चिड़ापन, मतभेद, वैर भाव, जितना ईर्ष्या रहेगा यहाँ, उतना क्या होगा उस संबंध को ठीक करने में? और मेहनत हो जाएगी। रिएक्शन मोड से रिस्पॉन्स मोड में आना ही होगा, समाधान तो परिस्थिति का करना ही होगा। परिवार है, मतभेद हो जाते जीवन साथी के साथ, बच्चों के साथ, तो हम थोड़ा गुस्से में आ जाते हैं, बात नहीं करते हैं, फिर क्या करना होगा? कितना समय रहेंगे? नहीं, बहन जी भोजन बना के कहेगी बच्चे को, कह दो भोजन तैयार है, टेबल पर रख दिया है, नहीं? भाई साहब कहेंगे बच्चे को, कह दो कि मुझे भूख नहीं है, अभी नहीं खाऊंगा, नहीं होता है ना, लेकिन कितना समय चलेगा, बात तो करनी होगी, लेकिन जितना समय हम खींचातान करते रहेंगे मन से भी, क्या होगा वो संबंध, क्या होगा उसमें, जितनी दुख की लेन देन करेंगे, जितना एक दूसरे के लिए नेगेटिव सोचेंगे, वो सारी ऊर्जा क्या हो रही है, सामने वाले व्यक्ति के पास पहुंच रही है। अपनों के लिए ही कई बार हम बहुत अंदर से दुख में परेशानी के वजह से नेगेटिव सोचते हैं, वो संबंध और ठीक करना डिफिकल्ट हो जाता है। तो सहन करना अर्थात हमें हमेशा मन को जल्दी से रिस्पॉन्स मोड में लाना है, क्योंकि ठीक तो करना ही है हमें, संबंध आगे तो बढ़ना ही है, तो उसके लिए हमें क्षमा करना है। तो क्षमा भाव जो है, अपने आप को हर परिस्थिति में हम ढाल सके, क्षमा कर सके, जरूरी है। क्षमा करना सहज है मुश्किल है? सहज है मुश्किल है? थोड़ा थोड़ा मुश्किल लगता है। कौन समझते हैं क्षमा करना सहज है? हाथ ऊपर करें, करते भी हैं। अच्छा, बाकी समझते मुश्किल है? मुश्किल है। यहाँ परमात्मा हमें सिखाते हैं कि हमें क्षमा क्यों करना है। कई समझते दीदी बहन जी आप क्षमा कर लेंगे तो वो व्यक्ति तो वापस करेगा, वैसे ऐसा है ना, यही कारण से क्षमा नहीं करते, उसको तो कभी रियलाइज नहीं होगा, ऐसा है ना? तो हम क्या करते हैं, क्षमा नहीं करके गुस्सा करते हैं, है ना, गुस्सा करते हैं ना, उसको डांटते हैं, बच्चा है, जीवन साथी है, कारोबार में सहयोगी है। अब क्या है, परमात्मा बहुत प्यार से हमें हमारे रेगुलर लेक्चर्स में समझाते हैं, परमात्मा कहते हैं आप देख लो, आज तक हमने अपने बच्चे को, अपने सहयोगी को, जिसको भी परिवर्तन करना चाहा, क्रोध से परिवर्तन हुए, हुए परिवर्तन, क्रोध से किसको परिवर्तन कर पाए हम, लिस्ट बताइए कितनों को कर पाए, किसी को भी नहीं, अपने आप को भी नहीं। अपने प्रति भी अगर हमें गुस्सा है, फ्रस्ट्रेशन है, गिल्ट है, तो अपने को भी चेंज नहीं कर पाते। क्षमा भावना अर्थात हम अपने मन को यहां से शांत कर लेते हैं। हर एक का, जैसे हम आगे समझेंगे, बहुत सुंदर कर्मों की कोई गति, एक हमारा बहुत सुंदर लेसन है। तो जैसे साइंस में भी कहते हैं भाई हर एक का कर्म का फल तो उसको मिलना है, लेकिन जब हम क्षमा करते हैं तो हम क्या करते हैं, यहाँ अपने मन को निश्चिंत कर लेते हैं, शांत कर लेते हैं, तो हमारा नेगेटिव सोचना समाप्त हो जाता है। तो उससे हमारा अपने साथ संबंध और हमारा उस व्यक्ति के साथ संबंध सुधरता जाता है। तो क्षमा भावना ये है, अपने आप को नेगेटिव फीलिंग से, दर्द से, स्ट्रेस से मुक्त करना। तो इससे क्या हो जाता है, सारे संबंध धीरे धीरे सहज होते जाते हैं। तो हम सहन तब कर पाते हैं जब हम क्षमा करते हैं। उसके साथ साथ हम देखते हैं परखना, संबंधों को ठीक रखने में परखना है। चलो बच्चे को बोलना भी है, आपको अपने कारोबार में, आप बड़े हैं, आपको कुछ टीम को मैनेज करना है, तो बोलना भी है, लेकिन कब बोलना है, किसी को अगर शिक्षा देनी है तो कब देना है, कब देना है, व्यक्तिगत रूप में, अकेले में, ऐसा है ना, पर्सनल, पर्सनली आप उनको बुलाकर जब कोई बात समझाएंगे तो क्या होगा, उनको स्वीकार करना सहज हो जाएगा। तो हमें परखना है क्या समय है, व्यक्ति की मनोस्थिति, और उस अनुसार उनके साथ हम उनको बता सकते हैं, गाइड कर सकते हैं, कहां हमें बोलना है, कहां हमें शांत रहना है, ये परखना बहुत जरूरी है। हम एक मीटिंग में हैं, कोई हमारे सीनियर कुछ कह रहे हैं, हमें ठीक नहीं लगता या प्रैक्टिकल नहीं लगता है, तो हम तुरंत वहां अगर रोक कर बीच में बोल देते हैं तो क्या हो जाता है, वातावरण तंग हो जाता है, डिसरिस्पेक्ट हो जाता है, और वो उसको स्वीकार नहीं कर पाएंगे। लेकिन बाद में वो बातचीत हो जाती, मीटिंग हो जाता है, हम पर्सनली उनके साथ बात करके पूछते हैं कि सर आपने तो ये बात कही, लेकिन मुझे लगता है ऐसे प्रैक्टिकल में हो सकता है, तो क्या करेंगे, वो आपकी बात को सुनेंगे, सहज स्वीकार करेंगे। तो परख चाहिए। हम कई बार राइट हैं बोलने के लिए, लेकिन कैसे बोलना है, कब बोलना है, और किस विधि से बोलना है, कहाँ बोलना है, किन शब्दों में बोलना है, वो परमात्मा हमको रोज प्यार से सिखाते हैं। परमात्मा भी रोज अपने मुरली में ज्ञान की शिक्षाएं हमें देते हैं, लेकिन कैसे हमें समझाते हैं तो उस विधि हमें भी सिखाते हैं। तो परखने के साथ साथ हम देखते हैं कि हमें निर्णय सही लेना है। निर्णय शक्ति जो है उस संबंधों को बहुत सहज बनाती है। निर्णय लेना है कि हमें संबंध को ठीक करना है। हमें बहुत वर्षों तक, कई बार हम कहते हैं कि भाई इतने समय से हम इनसे बात नहीं कर रहे हैं, हम इनको क्षमा नहीं करेंगे, तो परख कर सही निर्णय लेकर हमें उसको समाप्त करना है। आज आप यहाँ हैं, कोई भी आपका संबंध हो, कार्य क्षेत्र पर हो, परिवार में हो, जहां आपको लगता है कि अभी तक आपने किसी को क्षमा नहीं किया है, यहां से क्या करेंगे? परमात्मा का प्यार अपने अंदर भरकर उनको मन से क्षमा कर देंगे और जाकर फिर उनके साथ प्यार से बातचीत करेंगे। तो हम सब सही निर्णय लेते हैं तो हम हर निर्णय के आधार से अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं। तो जिम्मेवारी जो है, संबंध तब ठीक होते हैं जब जिम्मेवारी हम लेते हैं, है ना? कारोबार जब आप करते हो तो जिम्मेवारी लेना जरूरी है, जरूरी है, जरूरी है। अब लोग कार्य करना चाहते हैं लेकिन जिम्मेवारी कोई लेना नहीं चाहते। क्यों क्यों नहीं लेना चाहते? ऐसा महसूस करते कार्य क्षेत्र पर ऐसा होता, कार्य आप देंगे कर लेंगे लेकिन जिम्मेवारी नहीं लेना है, क्योंकि जिम्मेवारी में दोनों चीजें आ जाएगी। जिम्मेवारी में सफलता है तो भी जिम्मेवारी, लेकिन असफलता है तो भी जिम्मेवारी। अब जब आप संगठन को लीड कर रहे हैं, मौका मिलता है ना आपको, आपके संगठन को दिशा देना, कोई स्थान पर ले जाना, जहां भी क्राइसिस हो उनके साथ कार्य करना, कोई कहां तूफान है, कहां मतभेद है, उसको ठीक करना। तो आप जब संगठन के साथ हैं, अब जो कार्य किया उसमें सफलता मिली, तब तो हम कह देते हाँ हमने ही संगठन को लीड किया था, हमने ही वो निर्णय दिया था, हमने ही बताया था, हमने ही गाइड किया था। लेकिन अगर वहां सिचुएशन में सफलता नहीं मिली, फेलियर हो गया, असफलता हुई, तो फिर कौन जिम्मेवार? असफलता के लिए कौन जिम्मेवार? हम क्या महसूस करते हैं उस समय जब भी हम असफल होते हैं तो कौन जिम्मेवार होता है? हम तुरंत किसके बारे में कहते हैं? नहीं, हमने तो ये डायरेक्शन दिया लेकिन देखो हमको समय पर बताया ही नहीं गया, हमको ये बात वहां बताई नहीं गई, ये बाद में हम वहां पहुंचे तब ये जानकारी हमें मिली, इसलिए ऐसा प्रॉब्लम हुआ। और ये संगठन में देखो हमने तो उनको कहा लेकिन उसने तो उस समय वो सहयोग दिया ही नहीं, हमने कहा था ये साधन लेके जाए, वहां समय पर वो साधन था ही नहीं इसलिए हम ये कर ही नहीं सके। होता है ऐसा? जब असफलता होती है तब तो जिम्मेवारी लेना मुश्किल होता है। यहां हम सीखते हैं कि जब हम असफलता की जिम्मेवारी लेते हैं तो क्या हो जाते हैं? सक्षम हो जाते हैं। हर एक व्यक्ति असफलता में जिम्मेवारी नहीं ले सकता है। नहीं, कई हम अनुभव सुनते हैं, डॉक्टर अब्दुल कलाम का हम कई बार, आपने शायद सुना भी होगा कि जब पहला रॉकेट जो है उन्होंने भेजा था उनके संगठन में, उसके उस समय उनको गाइडेंस उनके सीनियर बॉस से मिल रहा था, और जब वो सैटेलाइट आकाश में गया लेकिन असफल हो गया, कुछ समय के अंदर ही वो वापस आके टूट गया। तो जब प्रेस वाले, क्योंकि इतना समय से उसके पीछे थे और ये भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि थी, तो इसलिए प्रेस वाले आ गए, तो उनके बॉस ने कहा, ऐसे लीड तो डॉक्टर अब्दुल कलाम कर रहे थे, लेकिन उनके बॉस ने कहा नहीं मैं जवाब दूंगा, मैं प्रेस मीटिंग को एड्रेस करूंगा, तुम निश्चिंत हो जाओ, और उनको साथी बनाकर बिठाया था लेकिन लीड उन्होंने किया। और पहले ही उन्होंने सारे प्रश्नों का उत्तर कहा कि ये मेरी जिम्मेवारी है, लेकिन मेरे संगठन पर, मेरे सभी साइंटिस्ट पर मुझे 100% विश्वास है, और हम जो भी हमने यहां गलतियां की है उस सबसे सीखकर इतने समय में, उन्होंने समय अवधि बताई, फिर से हम ये प्रयास करेंगे। अब फिर से ये प्रयास हुआ, अब तो उन्होंने सब कुछ ठीक, गलतियां वगैरह ठीक कर ली थी, तो ये प्रयास 100% सफल हो गया। अब जब प्रेस मीट हुई तो डॉक्टर अब्दुल कलाम के जो बॉस थे, मुझे नाम उनका याद नहीं आ रहा है, उन्होंने सतीश धवन, तो उन्होंने इनको क्या कहा, प्रेस मीट किसको एड्रेस करना है? डॉक्टर अब्दुल कलाम को। तो सफलता के समय पर उनको आगे किया। तो उस समय अगर हम भी ऐसी जवाबदारी लेते हैं तो सारा संगठन क्या होगा? उनका आपके प्रति क्या भावना होगी? क्या भावना होगी? ट्रस्ट होगा। वो आपके साथ हमेशा सहयोग करेंगे। आप जहां काम करना चाहें वो आपके साथ काम करने के लिए तैयार होंगे, क्योंकि उनको पता है कि कुछ भी होगा जिम्मेवारी सर ले लेंगे, वो हमारे सामने होंगे। कितना भी डिफिकल्ट वो आपका एक्सपीडिशन होगा, डिफिकल्ट पोस्टिंग होगा, डिफिकल्ट परिस्थिति होगी, वो आपको सहयोग देंगे। संगठन का सहयोग आपको प्राप्त होगा, क्योंकि आपने समय पर जिम्मेवारी ली और जहां सफलता है वहां उनको आपने आगे बढ़ाया। और जब हम कोई असफलता की जिम्मेवारी लेते हैं तो उससे हम सीखते हैं, आगे बढ़ते हैं। और हम देखते हैं कि जब जिम्मेवारी आप ले लेते हैं, संगठन आपका है, आपका सहयोगी है, तो संगठन माना क्या? एक जैसे विचार हो जाने चाहिए। इसको संगठन हम कहते हैं, टीम स्पिरिट कहते हैं। टीम स्पिरिट अर्थात क्या, आपको क्या लगता है? जी, सेम गोल, लक्ष्य एक ही है, बहुत अच्छी बात है। और संगठन की शक्ति, टीम स्पिरिट अर्थात क्या? क्योंकि एक जैसे तो विचार नहीं होंगे ना, एक जैसा तो हम सोचेंगे नहीं। नॉर्मली हम भाषा में कई बार कहते हैं, देखिए पांच उंगली एक जैसी नहीं है, अलग अलग विचार है, अलग अलग व्यक्ति है। अब ये पांचों उंगली अगर एक जैसे शेप और साइज की बन जाए, थोड़े समय के लिए इमेजिन कीजिए, ये पांचों उंगली एक जैसे शेप और साइज की है, तो ये हाथ की क्षमता बढ़ेगी या कम होगी? कम हो जाएगी। तो ये भिन्नता क्या है? बहुत आवश्यक है। भिन्नता जो है ये इस हाथ की क्षमता को बढ़ाने के लिए। तो हरेक विचार हरेक का अलग हो, उसकी योग्यताएं अलग हो, उसकी सोच अलग हो, ये संगठन में आवश्यक है। क्योंकि वैसे भी कोई संगठन होता है तो उसमें हरेक की ड्यूटीज अलग अलग होती है, वो उसमें सक्षम होते हैं। तो इसलिए विचारों में भिन्नता या विशेषताओं में, कलाओं में, सोच में भिन्नता जरूरी भी है। लेकिन क्या है, पांचों उंगलियां जुड़ी हुई है, पाम से, इससे, हथेली से जुड़ी हुई है, इसलिए वो साथ है। तो इसलिए हम सब एक दूसरे के साथ उस गोल से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे के प्रति शुभ भावना और सम्मान से जुड़े हुए हैं, तब वो संगठन एक परिवार के रूप में कार्य करता है। हम संगीत सुनते हैं, सभी सुनते हैं ना, हमें यहाँ भी बहुत सुंदर गीत हम सुनते हैं ना, अच्छा लगता है ना। हम सबका अपना अपना संगीत है जो हमें बहुत पसंद है। अब वो संगीत क्या होता है, अलग अलग स्वर होते हैं ना, संगीत में अलग अलग स्वर है ना। अब जो संगीतकार होते हैं वो क्या करते हैं, वो अलग अलग स्वरों को, बहुत ऊंचे स्वर, बहुत नीचे स्वर, लेकिन क्या करते हैं वो, उनको बहुत सुंदर ताल से, रिदम से जोड़ देते हैं। और वो इतना सुंदर ताल होता है, रिदम होता है, जो सुनते ही हमें आनंद आता है। लेकिन अगर वो ताल टूट जाए, रिदम टूट जाए, तो क्या होगा, वो संगीत क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा? आपको सुनना पसंद आएगा? कर्कश आवाज, आवाज होगा, हमें सुनना पसंद नहीं है। लेकिन संगीत में भी भिन्न भिन्न स्वर हैं, कर्कश आवाज में भी भिन्न भिन्न स्वर है, दोनों में भिन्न भिन्न स्वर है ना, तो अंतर क्या है, अंतर क्या है दोनों में, अंतर क्या है? ये तो सुनना बहुत पसंद है, ये बिल्कुल सुनना नहीं। वहां ताल है, वो ताल से क्या किया है, हरेक की भिन्नता को एक संगठन में बांधा है। तो जब आप नेतृत्व कर रहे हैं तो आपको क्या करना है, उस भिन्नता को एक ताल से जोड़ना है, हरेक के लिए शुभ भावना, हरेक को एक रखना, हरेक के लिए हरेक की विशेषताओं को देखना, उन्हें उस ऊंचे लक्ष्य के साथ जोड़ना, तो ये आपका रोल होता है। तो जब आप ये ताल को क्रिएट करते हैं तो अगर कर्कश आवाज भी है तो वो क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, ताल जुड़ जाएगा तो कर्कश आवाज क्या बन जाएगा, संगीत। लेकिन अगर ताल टूट जाए, हर एक के लिए हमारी शुभ भावनाएं टूट जाए, एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या भाव आ जाए, एक दूसरे के प्रति थोड़ा नफरत की भावनाएं आ जाए, तो संगीत क्या बन जाएगा, कर्कश आवाज। तो हम देखते हैं कि हमारे विचारों से ही हम संगठन को मजबूत कर सकते हैं। तो इसलिए हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं हमारे अंतर में हमें अपने अंदर ये गुणों को, शक्तियों को भरना है। अब एक एक्टिविटी करेंगे, ठीक है। तो ये बहुत सुंदर गुण दिखाई दे रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं ना। सबसे अच्छा समाचार, शुभ समाचार है कि ये सारे गुण आपके पास हैं। ये आपको प्रेजेंटेशन मिल जाएगा, ठीक है। तो ये सब आपके पास रिकॉर्ड में रहेगा। अब ये सारे गुण आपके पास है क्योंकि किसने दिए हैं हमें ये सारे गुण, किसकी प्रॉपर्टी है? परमात्मा की। उन्होंने सारे गुण हमें वर्षे के रूप में दे दिए, हम सब में भरे क्योंकि हम उनकी रचना है, उनकी संतान है। तो ये हमारी प्रॉपर्टी हो गई। जैसे बच्चे का जन्म होते ही हम कहते हैं वारिस ने जन्म लिया, तो परमात्मा ने भी ये सारे गुण हमें दे दिए। कुछ गुण हमने यूज किए, जो गुण हमने प्रयोग किया रोज, तो वो गुण क्या हो गया? हमारा स्वभाव, हमारी स्ट्रेंथ हो गई, शक्ति हो गई। और कुछ गुण हमने नहीं यूज किया, यूज ही नहीं किया, प्रयोग ही नहीं किया, तो वो गुण आज हमारे अंदर नहीं है। लेकिन क्या हो गया? जैसे हम देखते हैं धीरज, हमने प्रयोग ही नहीं किया तो क्या बन गए? क्या हो गया? पेशेंस यूज ही नहीं किया तो क्या हो गया? इम्पेशेंट बन गए, कमजोरी आ गई। हाँ, हमारे अंदर वो कमजोरियां आ गई। तो ये कमजोरियां क्यों हैं? अनयूज्ड वर्चूज बिकम वीकनेस। जो गुण हमने प्रयोग नहीं किए ना, वही हमारी कमजोरियां बन जाती। अब हमें ये सारे ही लिस्ट में से सिलेक्ट ये करना है कि कौन सा गुण हमने सबसे ज्यादा यूज किया है। वो हमारा सिग्नेचर है, वो हमारी विशेषता है, हमारा व्यक्तित्व है। जब भी लोग आपसे मिलते हैं ना, तो उस गुण को सामने देखते हैं, महसूस करते हैं, और उस गुण के आधार से वो आपके साथ लेन देन करते हैं, आपको अप्रिशिएट भी करते हैं। चाहे आपके सीनियर्स, कलीग्स हो, चाहे अपने मित्र हो, वो आपकी इस गुण का वर्णन जरूर करते हैं, शक्ति का, स्ट्रेंथ का। तो ये सारे आपके पास है, लेकिन उसमें से एक सिलेक्ट कीजिए जो सबसे प्रभावशाली आपके अंदर है, ठीक है। तो ध्यान से देखिए और सिलेक्ट कीजिए। और जैसे आपने सिलेक्ट किया, हाथ ऊपर करिए। सबको हाथ तो ऊपर करना ही है, ठीक है। सिलेक्ट करके हाथ ऊपर करते जाइए। आप तो रोज एक्सरसाइज करते हैं, तो हाथ ऊपर करना तो सहज होना चाहिए। पहने भी करेंगे ना सभी? अच्छा, ठीक है। जिन्होंने नहीं किया वो भी सिलेक्ट कर ले, ठीक है। अब एक छोटी सी एक्टिविटी हम करेंगे, ठीक है। तो ये एक्टिविटी आपको आपस में फिर करनी है। कैसे करना है मैं आपको बताती हूँ। सिस्टर आप एक मिनट आ जाएंगे ऊपर। मैंने भी अपने वर्चू या अपना स्ट्रेंथ सिलेक्ट कर लिया। सिस्टर आपने भी सिलेक्ट कर लिया कोई भी एक गुण, ठीक है। अब आपको अपना परिचय अपने मित्रों के साथ, ये सब आपके फ्रेंड्स है ना, फ्रेंड्स बन गए ना, बन गए कि नहीं है? हाँ, सभी फ्रेंड्स है। देखो, तीन दिनों से आप आपस में बैठकर ज्ञान की बातें सुन रहे हैं। तो आपके हर एक फ्रेंड के साथ आपको ये लेन देन करनी है, अपना परिचय देना है। आप कहेंगे परिचय तो शायद कईयों से हो भी गया, लेकिन आज आपको परिचय अपने नाम से नहीं देना है, लेकिन अपने गुणों के आधार से। और ये गुण के आधार से अपना परिचय अपने मित्र के साथ करना है, और वो गुण की गिफ्ट उनको दे देनी। अब ये गुणों की जो शक्तियां हैं, ये गुण या विशेषताएं हैं, इसका इकोनॉमिक्स जो है वो बहुत सुंदर है। ये जितना आप देंगे गुण, क्या होगा? कम हो जाएगा, बढ़ेगा, बढ़ेगा, ठीक है ना। तो आपके अंदर बहुत सारे और गुणों की गिफ्ट्स आपको मिलेगी हर एक से, और आपका गुण जो है वो भी शक्तिशाली बन जाएगा, ठीक है। तो मैं सिस्टर के साथ पहले शेयर करूंगी, फिर सिस्टर मेरे साथ शेयर करेंगे। मैं दृढ़ता हूँ, मैं आपको ये दृढ़ता की चाबी दे रही हूँ। आपके जीवन में दृढ़ता के आधार से हर कार्य सहज और सफल हो जाएगा। आप कह सकते थैंक यू दृढ़ता।
तो मैं संतुष्ट मणि आत्मा हूँ, संतुष्टता मेरा स्वधर्म है। तो हमें खुद को भी संतुष्ट रखना है, और हम, हाँ, वो गिफ्ट हम आपको देते हैं कि आप भी हमेशा अपनी लाइफ में हमेशा संतुष्ट रहें और सर्व को संतुष्ट करें। संतुष्ट,
शुक्रिया संतुष्टता, ठीक है। अब आपको खड़े होना है,
बहुत समय से बैठे हैं, थोड़ा नींद भी आ रही थी पीछे सबको, तो आपको उठकर हरेक के साथ मिलना है। एटलीस्ट 10 लोगों से आपको ये लेन देन करनी है, ठीक है? तो पीछे शुरू करिए, जो आपके पीछे फ्रेंड है पहले बाजू में जो है उनसे हाथ मिलाइए, हाथ मिला के फिर ये लेन देन कीजिए। गिफ्ट देना और गिफ्ट लेना, सिर्फ देना नहीं लेना भी उनसे, ठीक है? तो 10 लोगों से आपको बातचीत करनी है, सिर्फ खड़े नहीं रहना, बातचीत करना। देखिए पीछे खड़े हैं आपके साथ, एटलीस्ट 10 लोगों से सिर्फ खड़े नहीं रहना, ब्रदर पीछे आप देखिए कोई ना कोई है, आपस में बातचीत कीजिए, पहले शुरू कीजिए जो बाजू में बैठे। थैंक यू। हरेक को एक 10 लोगों से मिलना है तो खड़े नहीं रहिए, प्लीज मिलते जाइए। आगे हमारे ब्रदर्स भी मिल सकते हैं आपस में। ये गुणों के आधार से ये गिफ्ट देना है। दस लोगों से मिलना है, खड़े नहीं रहना है, आपस में मिलिए। पीछे देखिए कितने सारे फ्रेंड्स हैं, बैठना नहीं है किसी को भी, आपको 10 लोगों से मिलना है फिर बैठना है। आप तो हमेशा डिसिप्लिन और उमंग उत्साह में रहते हैं ना, आपके लिए तो ये कार्य कितना सहज है। एक दूसरे से मिलिए, हाथ मिलाइए। जब 10 गिफ्ट्स आपके पास आ गई फिर आप आके बैठ सकते हैं। ठीक है, शायद आपने बातचीत कर ली है तो आ सकते हैं। पीछे वालों ने मिला, एक दूसरे के साथ शेयर किया, पीछे वाले जो बैठे थे अच्छा लगा आपने जिन्होंने शेयर किया, अलग था आपने परिचय तो एक दूसरे के साथ पहले भी लेन देन किया है। अच्छा, यहाँ अभी भी शेयर कर। अच्छा ठीक है, शुक्रिया। तो आपको अच्छा लगा? बहुत अच्छा लगा, यहाँ भी कर रहे हैं अभी तक, बहुत अच्छा। शुक्रिया भाई, अभी बैठ सकते हैं, बैठ जाइए। अच्छा क्यों लगा? अच्छा क्यों लगा? अच्छे गुण मिल रहे थे। अच्छा, और जब आप अपना परिचय अपने गुणों के आधार से दे रहे थे तो आपको अपने बारे में कैसे लग रहा था? अच्छा फील हो रहा था ना? क्योंकि जैसे हम अपने आप के गुणों के बारे में अपने मन में वो चिंतन आरंभ करते हैं कि मैं ये गुण हूँ, ये शक्ति हूँ, तो हमारा अपने प्रति शुभ भावनाएं और ऊंची भावनाओं के आधार से हमें अंदर से अपने प्रति सम्मान महसूस होता है, खुशी महसूस होती है। फिर आपने ये लेन देन की तो कौन सी ऊर्जा की लेन देन हुई? पॉजिटिव स्नेह की ऊर्जा, पॉजिटिव। ऐसे हमने सबके साथ मिले, आप में से कई हैं जो एक दूसरे को नहीं भी जानते थे, नहीं जानते थे ना, लेकिन आप मिले तो आपको कैसा लगा कि सामने वाला व्यक्ति तो हमारा है? नहीं, अलग लगा या अपना लगा? तो एक गुणों की विशेषता है कि वो हमारे आंतरिक स्व से जुड़ता है, तो सामने वाले व्यक्ति के भी आंतरिक स्व से हम जब जुड़ते हैं तो वो एक परिवार की महसूसता हो जाती है। अब कारोबार में भी हर बार जब हम सामने वाले व्यक्ति के गुण को अपने मन में रखते हुए फिर कारोबार की लेन देन करेंगे, लेन देन करना पड़ता है, बातचीत करनी पड़ती है, कारोबार में आपको करना पड़ता है, अपने सहयोगियों के साथ, आपके नीचे जो टीम काम कर रहा है उसके साथ, अपने बड़ों के साथ, तो जब उनके विशेषता को मन में रखते हुए फिर उनके साथ बातचीत करेंगे, कार्य करेंगे, तो इससे परिवर्तन होगा, मदद मिलेगी। क्या मदद मिलेगी, क्या मदद मिलेगी? उनकी विशेषता को मन में रखते हुए फिर कारोबार के लिए कारोबार जो बातचीत है करना है वो करेंगे तो क्या मदद मिलेगी? हमें समझ होगी कि उनको क्या चाहिए हमसे, अच्छा वो भी, और हमारी भावनाएं कौन सी होगी उनके प्रति, कौन सी होगी? सम्मान की, स्नेह की, शुभ भावनाएं होगी। कार्य होता रहेगा लेकिन एक दूसरों के साथ अगर हमारी सकारात्मक ऊर्जा की लेन देन भी साथ साथ होती रहे तो क्या होगा, संबंध मजबूत बनते जाएंगे। दूसरा हम देखते हैं कई बार आपस में विचारों में अंतर भी हो सकता है, होता है, सहयोगी है या आपके नीचे का टीम है, परिवार में जीवन साथी है, बच्चे हैं, लेकिन जब भी उसके बारे में भी आपस में हम डिस्कस करना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं सामने वाले व्यक्ति को, लेकिन उस समय भी हम उनकी विशेषता को मन में रखते हुए फिर उनसे बातचीत करेंगे कि ठीक तो नहीं किया ये कार्य उन्होंने, उस समय पर उनको पहुंचना चाहिए था या समय पर उनको ये कार्य मुझे करना चाहिए था या मुझे ये जानकारी देनी चाहिए थी तो वो मुझे बताना है। लेकिन हम जब उनसे मिल रहे हैं तो हम मन में उनकी विशेषता को भी रखते कि ये व्यक्ति बहुत सहयोगी है, ये व्यक्ति बहुत सहयोगी व्यक्ति है, सदा हरेक के लिए सहयोग के लिए उपस्थित है, और फिर उनके साथ बातचीत करते हैं तो क्या मदद होगी, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन में क्या मदद होगी? जो विचारों में अंतर है उसमें हमें क्या सहयोग मिलेगा, क्या सहयोग मिलेगा जी? हाँ, और सामने वाले व्यक्ति की हमारे प्रति भावनाएं कैसी होगी, क्योंकि सकारात्मक ऊर्जा की लेन देन है, वो हमारी बात को स्वीकार करने के लिए मन से धीरे धीरे तैयार हो जाएगा और हमारी भी उनके प्रति भावनाएं हमेशा शुभ रहेगी। कारोबार संबंधित जानकारी हमने दी कि भाई ये भाई ऐसा है ऐसा है, लेकिन उनके प्रति हमारी भावनाएं जो है कि व्यक्ति बहुत सहयोगी है, हमेशा उनका कार्य में ये ऑनेस्ट है बहुत, तो उनके प्रति जो हमारी ऊंची भावनाएं हैं उसके वजह से हमारे जो कॉन्फ्लिक्ट जो विचारों में कारोबार में है उसको रिजॉल्व करना सहज हो जाएगा। जो इश्यू है वो डिस्कस करेंगे, व्यक्तिगत रूप में एक दूसरे के प्रति हमारी सम्मान की भावनाएं, हमारे सहयोग की भावनाएं, मित्रता की भावनाएं हमेशा मजबूत रहेगी। जरूरी है हाँ, इश्यू तो कोई ना कोई होता रहेगा, कोई ना कोई विचार में कारोबार में ऊपर नीचे होगा, लेकिन अगर हमारी मित्रता एक दूसरे के साथ बनी रहे, सम्मान बना रहे, तो कार्य करना सहज होता जाएगा और सफलता भी हमें सहज मिलेगी। तो हम अपने अंतर में ये गुणों को भरपूर कैसे करें, अपने प्रति दूसरों के प्रति भी उनके गुणों को हम कैसे देखें, तो सदा मन में हरेक के प्रति क्या रखना है हमें, शुभ भावनाएं। कैसे रखेंगे, उनकी विशेषताओं को देखकर। अब जैसे एक प्लेट आपके सामने रख दिया, उसमें बहुत सारे पत्थर हैं, लेकिन आपको पता है कि इसमें एक हीरा है, तो आप ढूंढेंगे किसको, क्यों? पत्थर इतने सुंदर है, अलग अलग रंग बिरंगी, बहुत सुंदर सुंदर है, फिर आप हीरे को क्यों ढूंढ रहे हैं, हीरे को क्यों ढूंढ रहे हैं जी? वैल्यू ज्यादा है। तो ऐसे हरेक व्यक्ति के संपर्क में जब हम आते हैं तो थोड़ी बहुत कमी कमजोरियां दिखाई देती, लेकिन वैल्यू किसमें है, उनकी विशेषताओं में, उनके गुणों में, उनकी योग्यताओं में, उनकी उपलब्धियों में, तो उसे हमें देखना है। और जैसे हम वो गुण देखते जाएंगे क्या होगा, उस गुण के आधार से हमारी जो लेन देन होगी तो आपसी संबंध तो ठीक होगा, वो व्यक्ति भी उस गुण को प्रयोग करना आरंभ करेगा। बहुत सुंदर एक प्रिंसिपल है साइंस का, वे अटेंशन गोज एनर्जी फ्लोज, वे एनर्जी फ्लोज इट ग्रोज। जहां भी ध्यान केंद्रित करते हैं वहां ऊर्जा का संचार होता है, जहां ऊर्जा का संचार होता है वहां उसका विकास होता है। अपने बारे में भी हम सोचेंगे तो क्या देखेंगे, अपने आप के बारे में क्या देखेंगे, विशेषताएं। अपने आप को किस स्वरूप में देखेंगे, आत्मिक स्वरूप में, और हमारी जो विशेषताएं हैं, जो गुण है, और ये इतनी सारी विशेषताएं जो परमात्मा ने हमारे अंदर भरी है उसका चिंतन करेंगे। तो अपनी भी विशेषताओं को देखकर अपने प्रति भी क्या होगा, हमेशा मन में शुभ भावनाएं, दूसरों के पहले अपने प्रति, क्योंकि हम तो अपने साथ कितना समय है, कितना समय अपने साथ है हम, वो एनर्जी हम कॉन्स्टेंटली रेडिएट कर रहे हैं। दूसरा शब्द, शब्दों में भी क्या हो, हम हरेक को अप्रिशिएट कर सके, हरेक की विशेषता का वर्णन कर सके, हरेक को हम इनकरेज कर सके। जरूरी है, जरूरी है। तो हम देखते हैं कि वो पहले शुरू करना है कहाँ, परिवार से। जरूरी है ना, बच्चे हमें हमेशा चिल्ड्रन कैंप पे कहते हैं, दीदी हमने कोई गलती की ना तुरंत मम्मी डैडी बोलना शुरू करते, लेकिन हमारी जो विशेषताएं हैं, जो हमने कुछ अचीव किया तो उसके लिए हमें कभी भी कोई कॉन्ग्रेचुलेट नहीं करते। वो तो जरूरी था, वो तो था ही ना, मैंने तो तुमको इतना पढ़ाया था, मैंने तो इतनी मेहनत की, ये तो करना ही था, तुमको होना ही था। तो हम देखते हैं कि बहुत जरूरी है कि हम हरेक की जो उपलब्धियां, उनकी जो विशेषताएं, उनकी जो भी उन्होंने अच्छा किया उसमें उनको अप्रिशिएट करें। तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली जब हम उनकी अच्छाई को बार बार उनके अंदर उसको वर्णन करेंगे, भावनाओं को हम उनके अंदर जागृत करेंगे, तो वो भी अपने उस गुण को, अपनी उस विशेषता को बार बार प्रयोग करने के लिए मोटिवेट होंगे। फिर हम देखते हैं हमारे कर्म कैसे हो, एक्शंस कैसे हो। कल बहुत अच्छा, हम आज आपका जैसे पैनल डिस्कशन था, कल वहां पैनल डिस्कशन था, तो हमारे जो टीजी साहब थे उन्होंने बहुत प्यार से कहा कि इस समय का जो वातावरण है उसमें एक नेतृत्व करने के लिए हमें कर्म करके दिखाना होगा। इंग्लिश में बहुत सुंदर कहा जाता है, वी हैव टू वॉक आर टॉक। नहीं, अगर हम बोल एक रहे हैं और कर कुछ और रहे हैं तो क्या होगा, हमारे बोल का, हमारी शिक्षा का वैल्यू नहीं है, बच्चा भी नहीं करता है। नहीं, हमारे पास जो, जैसे मैंने बताया, कैंप में आते हैं और ऐसे भी परिवार आते हैं तो छोटे छोटे बच्चे भी आते हैं मेडिटेशन करने के लिए। तो एक छोटी बच्ची आई और कहा, दीदी आपको मालूम है हमारा स्कूल शुरू हो गया, अब वो है प्री प्राइमरी, जूनियर केजी। तो कहा, दीदी टीचर पहले दिन ही आके हमको बोलने लगी, साइलेंस प्लीज, साइलेंस प्लीज। पर दीदी वो तो डांट रही थी, वो तो गुस्सा कर रही थी। अर्थात बच्चे को भी ये समझ है कि मुझे कहा जा रहा है शांत रहने के लिए, लेकिन जो कह रहा है वो खुद क्या है, वो खुद तो अशांत है, वो खुद तो जोर जोर से बोल रहा है, वो खुद तो हलचल में है, वो खुद तो गुस्से में है। तो अंतर समझता है बच्चा। कहा, दीदी ऐसा कर रही थी। हमने कहा, वो आपको चुप कराने के लिए कह रही थी, लेकिन उनको समझ है। तो हम देखते हैं कि जो हम करते हैं वो सामने वाला व्यक्ति उसको ही स्वीकार करता है। कई एक्सरसाइज आपको संजीव भाई ने भी कराया था ना उस दिन, कि जो हम देखते हैं वो तुरंत स्वीकार होता है। तो इसलिए हमें क्या करना है, अभी हर चीज करके दिखाना है। परिवार में तो बहुत बहुत जरूरी है, जरूरी है ना। जो संस्कार हम बच्चों को देना चाहते हैं वो प्रैक्टिकल में हमें करना है, क्योंकि हम बच्चे को तो कहते हैं कि आपको सम्मान से बात करना चाहिए, और उसने हमें फोन पर बात करना सुन लिया। नहीं, हम अपने कोई जो कलीग है या हमारे नीचे काम करने वाले व्यक्ति ने कुछ नहीं ठीक किया और हम उसको जोर जोर से बोल रहे हैं तो क्या होता है, बच्चा सुन रहा है तो वो उस बात को स्वीकार नहीं करता है, तो वो रिस्पेक्ट जो है कर्मों के द्वारा नहीं होता। तो इसलिए हम देखते हैं कि आंतरिक जो हमारे गुण और शक्तियां हैं उसको हम अपने प्रति भरते जाएं, अपने आप को भी इस आत्मिक स्वरूप में महसूस करें, और उस परम शक्ति की उनको भी याद जब हम करते हैं तो हरेक को उनकी संतान के रूप में देखते हैं, तो ऑटोमेटिकली उनकी विशेषताओं को हम देख सकेंगे। जैसे अगर आपके बच्चे को किसी ने सहयोग दिया, स्कूल में वो गया था, वो गिर गया, किसी और बच्चे ने या किसी टीचर ने उसको सहयोग दिया, उसका उसकी मलम पट्टी करके उसको आराम कराया, उसको सहयोग दिया, तो क्या होगा, जब आप स्कूल जाएंगे तो आप क्या करेंगे, उस बच्चे को या उस टीचर को क्या कहेंगे, शुक्रिया करेंगे, आपके दिल से उनको दुआएं निकलेगी, दुआएं निकलेगी, क्यों, क्योंकि आपके बच्चे की उसने मदद की। तो जब हम हरेक के प्रति शुभ भावना रखते हैं, क्षमा भावना रखते हैं, उनसे प्यार से संबंध में आते हैं, तो किसके बच्चे को हम प्यार दे रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं, ईश्वर के बच्चे को। तो ईश्वर की हमारे प्रति क्या भावनाएं होंगी, दुआओं की। तो हम देखते हैं परमात्मा की आपको बहुत सारी दुआएं मिलेगी जब आप सहन शक्ति धारण करते हैं, सम्मान देते हैं, जब लव और लॉ का बैलेंस रखते हैं, तो परमात्मा की हमें बहुत सारी दुआएं मिलेगी। तो चलिए कुछ समय के लिए फिर से हम अपने मन को उस परमात्मा के पास ले जाते हैं, ताकि उस प्यार को, उस शक्ति को अपने अंदर भर सके, जिससे हमारा अपने साथ भी संबंध फ्रेंडली हो जाए, स्नेह का हो जाए, और हरेक के प्रति भी हमारे संबंध शक्तिशाली बने। तो कुछ समय के लिए हम उस परम शक्ति को जोड़ते हैं। परमात्मा के साथ हमारा संबंध समीप कैसे होगा? जितना समय हम उनके साथ बिताएंगे उतना संबंध समीप होगा। आप अभी 3.5 दिन से आए हैं ना, 2.5 दिन से आए, तो अब ब्रह्मा कुमारी संस्था के साथ आपका संबंध कैसे हो गया है? समीप। इसके पहले भी शायद आपने देखा होगा, कहा सुना होगा, लेकिन आप जानते नहीं थे, तो आप किसी को जाकर मिलना आपको स्वाभाविक नहीं लगता है। लेकिन अब आप जब भी जाएंगे और कहां भी बहने मिलेंगी या कोई भी संस्था की तरफ से आपके सामने होगा, तो आप क्या करेंगे? उनसे मिलेंगे कि अरे हम आपके हेडक्वार्टर्स में गए थे, क्योंकि संबंध हो गया ना, इतना समय हमने एक दूसरे के साथ बिताया है, लेन देन की है। ऐसे ही सारे दिन में परमात्मा के साथ जितना समय बिताएंगे, जितना उनके साथ बातचीत करेंगे, जितना उनके साथ इंगेज रहेंगे, उतना हमारा संबंध क्या हो जाएगा? शक्तिशाली, जहां परमात्मा के स्नेह के अधिकारी बन जाएंगे। और जब ईश्वर के साथ हमारा संबंध शक्तिशाली हो गया, तो बाकी सबके साथ संबंध तो हमारे ठीक होने ही है, क्योंकि वो सब भी कौन है? उनके बच्चे हैं। तो ईश्वर फिर उन आत्माओं के साथ भी हमारे संबंध को ठीक कर देता है। तो चलिए हम कुछ समय के लिए फिर से उस परमात्मा को याद करते हैं और उनके साथ अपनी दिल की बातचीत करते हैं। कुछ समय के लिए मन को हम बाकी सभी बातों से समेट लेते हैं। आज पुनः हम कुछ समय के लिए अपने उस आंतरिक स्व को देख रहे हैं। बाह्य जगत में अपने बाह्य व्यक्तित्व के द्वारा हम सदा कार्य करते रहते हैं, परिवार, कार्य, कार्य क्षेत्र में हमारे सहयोगी, जिम्मेवारियां, हमारा स्वास्थ्य। आज कुछ समय के लिए हम उस आंतरिक व्यक्तित्व को देख रहे हैं, मन की आंखों से अपने सुंदर आत्मिक स्वरूप को निहार रहे हैं। आंखों के पीछे प्रकृति के मध्य में ये सुंदर सितारा, शांति का सितारा चमक रहा है। मैं आत्मा, शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप हूं। मन की आंखों से देखें कि शांति का प्रकाश मस्तक से लेकर सारे शरीर में प्रवाहित हो रहा है। ये शांति की लाइट चारों तरफ फैल रही है। मन की आंखों से देखें कि हमारे जीवन के अनेक संबंध, पहला हमारा परिवार, परिवार के हर एक सदस्य को मन की आंखों से देखें, अपने जीवन साथी को, बच्चों को, माता पिता को, भाई बहन को, लेकिन अब हमने उनके आत्मिक स्वरूप को भी मन की आंखों से देखा। हर एक के मस्तक के मध्य में वो सुंदर आत्मा चमक रही है, वो परमात्मा की संतान है। अंतर मन से, दिल से अपने परिवार के हर एक सदस्य को शुभकामनाएं भेजे, दिल से उन्हें दुआएं दे, दिल से उनका धन्यवाद करें, उनका प्यार, उनका साथ आपके जीवन में कितना महत्वपूर्ण है, आज दिल से उनको ये बात बताएं, उनके प्रति दिल से दुआएं दे। मन की आंखों से देखें कि परमात्मा की दुआएं, परमात्मा की शक्तियां एक सुरक्षा कवच बनकर उनके साथ है, उन्हें शक्ति दे रही है, उन्हें सुरक्षित रख रही है, उन्हें स्वस्थ बना रही है, उन्हें सदा खुश और सदा आनंदित महसूस करा रही है। अपने इस सुंदर परिवार से न्यारा होकर अपने बड़े परिवार को देखें, अपने कार्य क्षेत्र पर, अपने विशेष फोर्स से जहां से आए हैं उसको देखें, कार्य क्षेत्र पर अपने पोस्टिंग में हमारे जो सहयोगी हैं, हमारे सीनियर्स हैं, वहां जो भी हमारे साथ काम कर रहे हैं, वो सारा एक सुंदर परिवार है। हर एक के मस्तक के मध्य में उस सुंदर आत्मा को देखें, वो भी परमात्मा की संतान है, शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप आत्मा है। हम दिल से उनको धन्यवाद दें, दिल से उनको दुआएं दें। हर एक साथी सहयोगी बड़े सबके प्रति हमारा सम्मान रहे, उस सम्मान की शुभ भावनाएं उनको भेजें, दिल से उन्हें धन्यवाद करें। उस हर एक सहयोगी ने, बड़े ने हमें कितना आगे बढ़ने में दिशा दी है, बहुत कुछ सिखाया है, आगे बढ़ाया है, दिल से उनका धन्यवाद करें, शुक्रिया करें। उनको दिल से दुआएं भेजें कि वो सदा आगे बढ़ते रहें, सदा सुरक्षित रहें। परमात्मा की दुआएं शक्तियां उनका सुरक्षा कवच बनकर उनको सदा सुरक्षित रखे, ऐसी दिल की शुभ भावनाएं उनके पास भेजें। अब अपने संगठन से भी न्यारा होकर इस विश्व को देखें, इस सारा ग्लोब हमारे सामने है, अलग अलग कंट्रीज हैं, भाषाएं हैं, धर्म है, रंग हैं, संस्कृतियां हैं, लेकिन हर एक व्यक्ति को हम देख रहे हैं, उनके मस्तक के मध्य में उस सुंदर आत्मा को देख रहे हैं। ये विश्व मेरा परिवार है। इस समय सृष्टि पर हर एक आत्मा कोई ना कोई दर्द, अशांति, निराशा और दुख में है। उन सबको हम दिल से दुआएं दें, उन्हें शांति के वाइब्रेशंस भेजें, हिम्मत की ऊर्जा भेजें, आशा की किरणें भेजें। मन की आंखों से देखें कि परमात्मा की दुआएं, परमात्मा की शक्तियां, परमात्मा की हीलिंग एनर्जी उस हर एक व्यक्ति को प्राप्त हो रही है, इस सृष्टि पर हर एक आत्मा को प्राप्त हो रही है। उनके जीवन में वो शांति, शक्ति और सुख की किरणें भर रही है। परमात्मा की हीलिंग एनर्जी सारे विश्व रूपी ग्लोब को, प्रकृति सहित सबको ऊर्जा दे रही है, शांति दे रही है, प्यार दे रही है, शक्ति दे रही है। हमारे मन में सबके लिए जब दुआएं हैं, शुभकामनाएं हैं, तो हमारा मन, हमारा दिल, हमारा हृदय भी परमात्मा के उस प्यार से भरपूर हो रहा है। अपने आप को भी उस परमात्मा की छत्र छाया में महसूस करें, अपने आप को ब्लेस्ड फील करते हुए उस परमात्म प्यार से, दुआओं से भरपूर महसूस करते हुए पुनः अपने आप को यहाँ इस संगठन में देखें। आंखें अगर बंद है तो आंखों को खोल दें, फिर से हम अपने आप को यहाँ इस संगठन में देख रहे हैं। ओम शांति शांति शांति। रोज हम 2 मिनट के लिए भी अपने परिवार को ऐसे शुभकामनाएं दे सकते हैं मेडिटेशन में, देंगे रोज, और जिस कार्य क्षेत्र में रोज हम जाएंगे कार्य करने के लिए उनको भी 2 मिनट के लिए, जरूरी है, बहुत जरूरी है। इसका आपके संबंधों पर बहुत सुंदर प्रभाव पड़ेगा। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओम शांति।
अभी आप लोगों ने टीवी से जो सुना, वो जो गाना आप सुना करते थे एक जमाने में, तुरा मत दर्पण कहलाए, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए, तो आपने देखा कि जो मन रूपी आपका दर्पण है वही सब कुछ है। और यहाँ पे मन को ही बदलने की बात आपको बताई गई। जितनी भी चीजें हैं वो अगर मन में जरा सी भी गड़बड़ी हो जाती है, जरा सी बात हो जाती है, जैसे लोगों ने कहा कि लम्हों ने खता की थी और सदियों ने सजा पाई, तो जरा सी गलती हमसे हो जाती है, न जाने कितने जन्मों तक हमको उसको भोगना पड़ता है। इसलिए अगर हमको जीवन में कुछ पाना है तो उसके लिए हमको एक शब्द आता है इनडिपेंडेंट होना है। इनडिपेंडेंट माने आंतरिक हमारी शक्ति इतनी हो कि हम उस पर निर्भर हो जाएं। अभी तक हम निर्भर किस पे हैं? सारे बाहर पर, दूसरों की वजह से। किसी ने कुछ कहा हमको दुख हुआ, हमारा रिमोट कंट्रोल सबके पास है, अपने पास नहीं है। दूसरे अगर हमारे लिए कुछ कर रहे हैं तो हम खुश हो रहे हैं, बच्चा पास हो गया हम खुश, फेल हो गया हम दुखी, रिमोट कंट्रोल उसके पास है। पत्नी ने हमारी बात मानी हम खुश, नहीं मानी हम दुखी, रिमोट कंट्रोल उधर है। तो जिसने भी, दोनों हैं, दोनों पति पत्नी की, ऐसा नहीं है कि एक ही तरफ की बात है। आपके मित्रों को अपने दे दिया कि आपके मित्र आपके अनुसार चल रहे हैं तो बहुत अच्छा है। तो हमको करना क्या है, इन अपने आंतरिक शक्तियों को जागृत करेंगे, उस पर जब आप निर्भर हो जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपको जितनी शक्तियां आपकी आंतरिक शक्तियां जागृत होंगी उतना ही, और उन पर निर्भरता होगी तो जीवन आपका बदल जाएगा। तो ये जो है आपकी लाइफ चेंजिंग जो है वो एक आपको मंत्र यहाँ पे दिया गया, और मंत्र जो शब्द है उसको भी आप देखिए, मन वो शब्द क्या है, मंत्र, वो कहता है मन और त्र, त्र माने फ्री करना, जो मन को मुक्त कर दे, फ्री कर दे, वही मंत्र है। तो जो यहाँ आपको दिया गया यही मंत्र है, असली मंत्र यही है कि अपने आप को आंतरिक रूप से सशक्त बनाइए। और अगर हमने ये काम कर लिया, अगर ये एक्सरसाइज हमने कर ली, जैसा अभी मेडिटेशन भी आपको कराया गया, उसके लिए सबसे आसान तरीका है मेडिटेशन, उसको आप करेंगे जीवन बदलेगा। और हम जो कहा गया, हम सुधरेंगे जग सुधरेगा, जग सुधरेगा हम सुधरेंगे नहीं होता है, हमको सुधरना है, हम सुधर जाएंगे, जग सुधर जाएगा, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। और एक बार फिर दीदी ने जो हमको आज सबक दिया है, जो हमको मंत्र दिया है, उस मंत्र के लिए एक बार पुनः तालियों से स्वागत करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद।